बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में किताब मुताले पाकिस्तान नवी और दसवीं जमातों के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये किताब 176 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये किताब अलसुफा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। आइए किताब का पार्ट नंबर 10 सुनते हैं। सफ़ा नंबर 99। सनअती मैदान में इस पसमानदगी को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम सनअती बुनियाद मुहैया करने के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। 1948 में एक सनअती प्लान का ऐलान किया गया जिसमें सनअती मैदान में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई थी। 1962 में हुकूमत ने पाकिस्तान सनअती तरक्याती कॉरपोरेशन PIDC कायम की और सरकारी सरमायाकारी के ज़रिए बड़ी सनअतें कायम की गईं। लेकिन 1972 में कारखानों की 10 इकसाम कैटेगरी को कौमी तहवील में ले लिया गया। वापस वक्त की हुकूमत के इस अमल से निजी सरमायाकारों के लिए बेएतमिनानी और गैर यकीनी का माहौल पैदा हो गया और वह सनअती शोबे में सरमायाकारी करने से हिचकिचाने और परहेज़ करने लगे। मगर अब हुकूमत सनअतों की नचकारी की कोशिश कर रही है। सफ़ा नंबर 100। इसके अलावा वो निजी शोबे को नए सनअती यूनिट लगाने की इजाज़त भी दे रही है। बैरूनी सरमायाकारों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई है और इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। नंबर 3, सनअतें। पाकिस्तान में सनअतों को मंदरजा झेल इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, घरेलू और छोटी सनअतें। नंबर 2, भारी सनअतें। नंबर 3, दफाई सनअतें। नंबर 1, घरेलू और छोटी सनअतें। घरेलू और छोटी सनअतें बहुत अहम ही क्यों कि मुकामी सतह पर बहुत ज़्यादा रोज़गार मुहैया करती हैं। ये सनअतें बहुत कलील सरमायाकारी और सहल तंजीम से कायम की जा सकती हैं। अगर इनको मुनासिब तौर से मुनज़्ज़िम किया जाए तो देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी को कम करने का बहुत उम्दा ज़रिया बन सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की छोटी और घरेलू सनअतें बेशुमार मसनूआत तैयार कर रही हैं। पाकिस्तान में इन सनअतों का किरदार बहुत नुमायाँ और अहम है। हज़ारों अफराद मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता हैं और मुकामी और कौमी मासियत से में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान में घरेलू और छोटी सनअतें हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1, कालीन बाफी की सनअत। कालीन बाफी के लिए खाम माल पाकिस्तान में मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कालीन तैयार किए जाते हैं। कालीन बाफी के अहम मराकज़ सूबे पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और झंग में हैं। सूबे सिंध में कालीन बाफी के मराकज़ जैकबाबाद, सखर, खैरपुर, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, हैदराबाद और कराची में वाक़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कालीन बाफी का काम पेशावर में होता है और मुकामी सतह पर ये एक बहुत बड़ा पेशा है। इसी तरह क्वेटा बलूचिस्तान में बहुत कसीर तादाद में लोग कालीन बुनते हैं। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत कालीन तैयार होते हैं। ये बैरूनी ममालिक में भी बहुत मकबूल है। ये छोटी सनत कीमती ज़र मुबादला भी कमा रही है। कालीन ऊन और मसनूई रेशे से बुने जाते हैं। सफ़ा नंबर 101। नंबर 2, सूती पारचा बानी बाफी की सनत। घरेलू और छोटी सनतों में ये एक बहुत अहम सनत है। इस सनत में दस्ती खड़ियाँ शामिल हैं जिनका जाल पंजाब और सिंध में बिखरा हुआ है। इन दस्ती खड़ियों की तादाद हज़ारों में है। ये सनत मुकामी रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यह सूती दस्ती खड़ियाँ मुख्तलिफ़ अल्लू खूबसूरत खेस चादरें, सूती शॉलें और दरियाँ वगैरह तैयार करती हैं। सूती पारचा बाफी के अहम मराकज़ पंजाब में फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा और सियालकोट में हैं और सिंध में हैदराबाद और सखर सूती पारचा बाफी के मराकज हैं। नंबर 3, चमड़े की सनत। चरम साजी पाकिस्तान की एक अहम सनत है। कई तरह के जूते, सूटकेस, किनाते, बिस्तर बंद, दस्ती, हैंड बैग और चमड़े की दीगर अशिया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार की जाती हैं। चमड़े की मसनुआत सिंध में कराची और हैदराबाद, पंजाब में लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और सवात में तैयार की जाती हैं। बलूचिस्तान में चमड़े को रंगने का काम होता है। लोगों एक बहुत बड़ी तादाद इस सनत से वाबस्ता है। नंबर 4, खेलों के सामान की सनत। खेलों के सामान की सनत तैयार करने के लिए मतलूबा खाम खाल पाकिस्तान के चंद ख़ास इलाकों में काफ़ी मकदार में पाया जाता है। खेलों का सामान तैयार करने के लिए नरम लकड़ी और चमड़ा दरकार होते हैं। खेलों का सामान सियालकोट और लाहौर में तैयार होता है। ये अशिया ज़रमुबादला कमाने का भी बहुत अच्छा ज़रिया है। पाकिस्तान साख्ता हॉकी, क्रिकेट के बल्ले और गेंदें, फुटबॉल और रैकेट गैर ममालिक में बहुत मकबूल हैं। नंबर 5, कारीगरी कटलरी के सनत। मुख्तलिफ़ अंदाजी कटलरी, छुरी, कांटे और चमचे वगैरह पंजाब में वज़ीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर में बनाए जाते हैं। ये मुल्क के लिए ज़रमुबादला कमाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। नंबर 6, कशीदाकारी और कुरेशिये की सनत। कशीदाकारी और कुरेशिये का काम पाकिस्तान के लिए वजह इफ्तिखार हैं। यह पाकिस्तान का एक इंतहाई मकबूल हुनर है। रेशमी धागे से फूलों की कशीदाकारी बहुत मशहूर व मारूफ़ है और लोग इसकी जानिब राग़िब होते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में ये काम होता है। सफ़ा नंबर 102, सिंध और बलूचिस्तान में बलोची काम या बलोची फ़न बड़े पैमाने पर होता है। इस काम में खूबसूरती और हुसन पैदा करने के लिए कपड़े पर छोटे छोटे शीशे रेशमी धागे से परोए जाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में कशीदाकारी के अहम मराकज़ लाड़काना, दादू, शिकारपुर, नवाबशाह और हज़दार में वाक़ हैं। सिंध और बलूचिस्तान में ये बेशुमार ख़ानदानों का बहुत मकबूल पेशा है। इसी तरह पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में वसी पैमाने पर सलमा सितारा का काम भी होता है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और नौशहरा में कपड़ों पर फूल निकालने और चमड़े और कपड़ों पर ज़री सुनहरी कशीदाकारी का काम किया जाता है। नंबर 2, भारी सनतें। ये सनतें मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1, कपड़े की सनत। ये सनत पाकिस्तानी मौसियत और रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान में कसीर तादाद में कपड़े के बड़े और छोटे कारखाने हैं। इन कारखानों में बहुत नफीस इकसाम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान सूती कपड़े की सनत में खुद कफील हो गया है। हर साल सूती कपड़े और धागे की बरामद से करोड़ों रुपए ज़रमुबादला कमाया जाता है। सूती कपड़े की सनत के अहम मराकज़ पंजाब में फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान और सिंध में कराची और हैदराबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में ये मराकज़ पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, बन्नू, हरिपुर और सवात में वाक़ हैं। बलूचिस्तान में कपड़े की सनत के दो मराकज़ उथल और क्वेटा हैं। पाकिस्तान के सनती मज़दूरों की तकरीबन 50% तादाद सूती कपड़े की सनत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त मुल्क में सूती कपड़े के सिर्फ 3 कारखाने थे। उसके मुकाबले में अब कपड़े की तकरीबन 500 कारखाने काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऊनी कपड़े की सनत भी पाई जाती है, लेकिन इस कदर अफसरदा और खुशहाल नहीं है जितनी सूती कपड़े की सनत है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाली ऊन बहुत आला मेयार की नहीं है, इसलिए हमारी ऊन का ज़्यादातर हिस्सा कालीन साजी में इस्तेमाल होता है। پاکستان میں اونی کپڑے کے بڑے بڑے کارخانوں کے مراکز سندھ میں کراچی، پنجاب میں راولپنڈی کے نزدیک، لارنس پور لاہور اور قائد آباد بلوچستان میں ہرنائی مستونگ اور خیبر پختونخوا میں بنو نوشہرہ میں واقع ہیں، جہاں اونی کپڑا، کمبل اور اونی دھاگا تیار ہوتا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں اونی کپڑے کے تقریباً 70 کارخانے ہیں۔ لارنس پور اور کراچی کے اونی کپڑے کا کارخانے بہت معیار اونی کپڑے تیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 104، پاکستان میں ریشمی کپڑے کی صنعت بھی ہے۔ ریشمی کپڑا بننے کے لیے دو اقسام کے ریشم استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا قدرتی ریشم، جو ریشم کے کیڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مصنوعی ریشم، جو تالیفی ریشم بھی کہلاتا ہے۔ قدرتی ریشم ناپید ہوتے جا رہا ہے، اس طرح بہت زیادہ مہنگا اور گرا ہو گیا ہے، اس لیے مصنوعی ریشم مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو میں ایک ریشم کا کارخانہ کام کر رہا ہے، جہاں مصنوعی ریشم تیار ہوتا ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خام ریشم اور ریشمی دھاگا اور ریشہ بیرونی ممالک میں بھی درآمد کیا جاتا ہے۔ کراچی ریشمی کپڑے کی صنعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ ریشمی کپڑا فیصل آباد، لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، پشاور، سوات، سکھر اور حیدرآباد میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، چینی کی صنعت۔ یہ ملک کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ 1947 میں پاکستان نے چینی کے صرف 2 کارخانوں سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایک کارخانہ صوبہ پنجاب میں گوجرانوالہ کے نزدیک راہوالی میں اور دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا میں تخت بائی کے مقام پر تھا۔ چینی گنے سے حاصل کی جاتی ہے، جو تینوں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ان علاقوں میں چینی کے کارخانے لگانے کا فیصلہ کیا جہاں گنا کاشت کیا جاتا ہے۔ ملک میں 78 چینی کے کارخانے ہیں، 40 پنجاب، 32 سندھ، 6 خیبر پختونخوا میں، جن کی پیداواری صلاحیت 5 ملین ٹن ہے۔ شکر کی پیداوار میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہے، بلکہ چینی کی برآمد سے قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی شکر سب سے اعلیٰ معیار کی ہے۔ نمبر 3، سیمنٹ کی صنعت۔ سیمنٹ سازی کے لیے چونے کا پتھر اور جپسم استعمال کیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں چونے کے پتھر اور جپسم دونوں کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، اسی لیے سیمنٹ سازی کے بڑے بڑے کارخانے سرکاری اور نجی شعبے میں قائم کیے گئے ہیں۔ سرکاری شعبے کے کارخانوں کا نظم و نسق پاکستان اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن کے سپرد ہے۔ سیمنٹ سازی کے کارخانے پاکستان میں اسلام آباد، وفاقی علاقے اور پنجاب میں ڈنڈوت و دادو خیل، راولپنڈی اور ڈیرہ غازی خان کے کارخانے پاکستان میں اسلام اور سندھ میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹا، نوری آباد، روہڑی اور خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، ہری پور اور نوشہرہ، اور بلوچستان میں دروازہ ورگڈانی میں قائم ہیں۔ سیمنٹ کی پیداوار میں پاکستان تقریباً خود کفیل ہے۔ 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان کے پاس سیمنٹ سازی کا صرف ایک کارخانہ تھا۔ صفحہ نمبر 105، اس کے مقابلے میں سیمنٹ سازی کے اب 25 کارخانے کام کر رہے ہیں، جن میں 21 کارخانے نجی شعبے میں اور 4 کارخانے سرکاری شعبے میں ہیں۔ ان سب کی پیداواری صلاحیت 17.7 ملین ٹن ہے۔ نمبر 4، خوردنی تیل اور بناسپتی گھی کی صنعت۔ ابتدا میں یہ صنعت نجی شعبے میں قائم ہوئی۔ 1973 میں اس صنعت کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ 26 کارخانوں میں سے 23 کارخانے قومی تحویل میں لیے گئے اور انہیں گھی کارپوریشن آف پاکستان کے سپرد کر دیا گیا۔ بناسپتی گھی کی صنعت کے لیے خام خال، خام خوردنی تیل درآمد کیا جاتا ہے، کیونکہ مقامی خام مال کافی نہیں ہے، اس لیے اس صنعت میں استعمال کیے جانے والے खुर्दनी तेल बनाने के कारखाने पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये कारखाने सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर और शहीद बेनज़ीर आबाद नवाबशाह में और पंजाब में रहीम यार खान, भावलपुर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में, खैबर पख्तूनख्वा में, नौशहरा, हरिपुर और दरगई में और बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली और क्वेटा में हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी खुर्दनी तेल और घी के चंद कारखाने हैं। ये सनत अब मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के हवाले है। इस वक्त मुल्क में घी और खुर्दनी तेल के तकरीबन 160 कारखाने काम कर रहे हैं और इनकी पैदावारी सालाना 2.7 मिलियन टन है। नंबर 5, कीमियाई खाद की सनत। ये सनत ज़रई पैदावार के लिए मतलूबा कीमियाई खाद की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कायम खाद के मुख्तलिफ कारखानों से कई तरह की कीमियाई खाद तैयार की जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत से ज़ायद कीमियाई खाद तैयार हो रही है जो दूसरे ममालिक को बरामद कर दी जाती है। मुल्क में 10 कीमियाई खाद के कारखाने हैं, 5 पंजाब में, 3 सिंध में और 2 खैबर पख्तूनख्वा में। इनकी जुमला पैदावारी सलाहियत 5.6 मिलियन टन है। नंबर 3, दिफाई सनत। दिफाई सनत भी भारी सनत की सिफ में शुमार होती है। इस सनत में लोहे और फौलाद की सनत, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और जहाज़ साजी की सनत शामिल है। ज़ेल में उनके बारे में जायज़ा पेश किया जा रहा है। नंबर 1, लोहे और फौलाद की सनत। लोहे और फौलाद की सनत का दारोमदार लोहे की मादन पर है। खाम लोहे की मादन के ज़खायर पंजाब में कालाबाग और मक्कड़वाल में, खैबर पख्तूनख्वा में, लंगड़ियाल में और बलूचिस्तान में, हज़दार, ज़ियारत, चलगाज़ी और नौकंडी में पाए जाते हैं। सफ़ा नंबर 106, लेकिन ये ज़खायर मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं हैं, इसलिए हमें दरआमद शदा लोहे और फौलाद पर इन्हिसार करना होता है। इसके बावजूद लोहे और फौलाद की पैदावार और इनकी मसनूआत के लिए 2 बहुत बड़े सनती इदारे कायम किए गए हैं। ये सनतें ज़ेल के मुताबिक हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची। ये कारखाने कराची से 40 किलोमीटर के फासले पर पोर्ट बिन कासिम के मुकाम पर लगाया गया है। ये 1973 में रूस साबका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के तावुन से तामीर किया गया। इस कारखाने में पिग आयरन, कच्चा लोहा, लोहे की चादरें और कोल तैयार, तार या तार कोल वगैरह तैयार की जाती है। इस कारखाने के कायम होने से न सिर्फ हज़ारों अफराद को रोज़गार मयसर आया है बल्कि कसीर ज़र मुबादला भी बचा लिया गया है। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला। चीन के तआवुन से 1968 में टेक्सला के मुकाम पर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कायम किया गया। इस कारखाने से रेलवे इंजन, शक्कर साजी के कारखाने, सीमेंट फैक्ट्रीज, कपड़ा बनने की मशीनरी, मसनूई खाद के कारखानों, ट्रकों और फाजिल पर्जा जात की ज़रूरियात पूरी होती हैं। टेक्सला कॉम्प्लेक्स के क़याम से हमारी फौलाद और मशीनों की दरामद बहुत कम हो गई है और वो कसीर ज़र मुबादला बचा लिया जाता है जो मुख्तलिफ किस्म की मशीनों और फाजिल पर जात पुर्जा जात की दरामद पर खर्च किया जाता था। नंबर 2, जहाज़ साजी की सनत। जहाज़ साजी का एक कारखाना कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के नाम से कराची में 1956 में कायम किया गया है। इसमें मुख्तलिफ अलनू जहाज़ तैयार किए जाते हैं। ये शिप यार्ड बहरी जहाज़ों की मरम्मत के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस कारखाने में ना सिर्फ मुल्की जहाज़ बनाने और उनकी मरम्मत का काम किया जाता है बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए जहाज़ और माही गेरी के लिए कश्तियाँ भी तैयार की जाती हैं। जहाज़ साजी की सनत एक तवील अरसे में परवान चढ़ी है और अब ये इस काबिल है कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर सके। नंबर तीन, हथियार और असला साजी की सनत। हथियार और असला साजी का पहला कारखाना रावलपिंडी के करीब वाह में कायम किया गया था। फ़िज़ाई दफाई सामान खैबर पख्तूनख्वा में हवेलियाँ में और पंजाब में कामरा में तैयार होता है। कुछ दफाई मशीनें मशीन टूल फैक्ट्री लांडी कराची में भी बनती हैं। सफ़ा नंबर 107, इस तरह पाकिस्तान में अब मिज़ाइल भी तैयार होने लगे हैं। रवायती और जदीद पेचीदा हथियारों और असला साजी में अब पाकिस्तान तकरीबन ख़ुद कफील हो गया है। नंबर चार, ज़राए आमदोरफ़्त तो नकल हमल। ज़राए आमदोरफ़्त से मुराद वो ज़राए हैं जिनकी बदौलत अफराद सफ़र कर सकते हैं और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। ये ज़राए कदीम भी हैं और जदीद भी। कदीम ज़राए आमदोरफ़्त में सड़कें और बहरी सफ़र शामिल हैं। सड़कों पर सफ़र के लिए सादा गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थीं जिन्हें घोड़े गधे और या बैल खींचते थे। लोग पैदल भी सफ़र करते थे। ये सड़कें बहुत आरामदेह नहीं होती थीं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत वक्त लगता था। हवा की सिंध में चलने वाली बहरी बादबानी कश्तियाँ और छोटे जहाज़ इस्तेमाल किए जाते थे जो बहुत ज़्यादा महफूज नहीं थे। साइंस और फनियत टेक्नोलॉजी के फ़रोग के साथ ज़राए आमदोरफ़्त बहुत बेहतर हो गए हैं। सड़कें तामीर की गई हैं और इन्हें कंक्रीट और तारकोल से पुख्ता किया गया है। मोटर कारों ने गाड़ियों और जानवरों की जगह ले ली है। कश्तियों की जगह जदीद बहरी जहाज़ आ गए हैं। अब फिज़ा के ज़रिए भी सफ़र होता है। इन तमाम ज़राए आमदोरफ़्त की अपनी अपनी अहमियत है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ़्त की बहुत अहमियत है। ये मुआशी तरक्की में मदद देते हैं। इनकी मदद से खाम माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है और तैयार शुदा माल मंडियों तक ले जाया जाता है। इनसे बेरोज़गारी में कमी वाक़ होती है क्योंकि लोग दूर दराज के मुकामात पर भी मुलाजमत कर सकते हैं और बकसरत सफ़र कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि ज़राए आमदोरफ़्त दर्ज ज़ेल मकासद में मदद करते हैं। नंबर एक, मुल्क की ज़राअत और सनअत को फ़रोग़ देना। नंबर दो, मुकामी कौमी और बैनुल अक्वामी तिजारत को फ़रोग़ देना। नंबर तीन, लोगों के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र से इत्तेहाद और कौमी यकजहती और भाईचारे को परवान चढ़ाना। नंबर चार, मसला अफवाज की तेज़ रफ्तार हरकत से मुल्क की दिफा को मजबूत और मुस्तहकम करना। नंबर पाँच, अलूम वफनून को फ़रोग देना और उनके फ़ायदे मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाना। नंबर छः, मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने में मदद करना और सैलाब जलजिला और आग लग जाने जैसी कुदरती आफात की सूरत में जल्द अज़ जल्द इमदाद पहुँचाना। सफ़ा नंबर 108, पाकिस्तान में तीनों इकसाम के यानी बर्री सड़कों और रेलवे के ज़रिए बहरी और फ़िज़ाई ज़राए आमदोरफ़्त मौजूद हैं। आइए हम अपनी ज़राए आमदोरफ़्त का एक जायज़ा लेते हैं। नंबर एक, सड़कें। पाकिस्तान में सड़कें ज़राए आमदोरफ़्त और नकलो हमल का एक अहम ज़रिया हैं। सड़कें मुख्तलिफ शहरों को एक दूसरे से मिलाती हैं। सड़कें सफ़र करने और सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में पुख्ता सड़कें भी हैं और कुछ कच्ची भी। ख़राब मौसम में कच्ची या नीम पुख्ता सड़कों पर सफ़र आसान नहीं होता है। पाकिस्तान में सड़कों की कुल लंबाई 259758 किलोमीटर है। इनमें से अच्छी सड़कें और शाहराएं 162879 किलोमीटर हैं और बाकी सड़कें मामूली किस्म की नामवर और कच्ची हैं। पाकिस्तान की अहम सड़कें और शाहराहें मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर एक, कौमी शाहराह शाहराए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सबसे कदीम और सबसे अहम शाहराह है। इसकी लंबाई 1735 किलोमीटर है। ये कराची से शुरू होकर पेशावर और तोरखम तक जाती है। ये शाहराह इस सड़क पर वाक़ मुख्तलिफ शहरों मसलन हैदराबाद खैरपुर सखर भावलपुर मुल्तान लाहौर रावलपिंडी और पेशावर को आपस में मिलाती है। इन शहरों में से हर एक छोटे शहरों से मज़ीद छोटी सड़कों के ज़रिए मिले हुए हैं। लाहौर और पेशावर के दरमियान एक शाहराह का एक हिस्सा जर्नेली सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहलाता है। नंबर दो, कराची क्वेटा शाहराह बरआस्ता खजदार। ये शाहराह कराची को सूबह बलोचिस्तान के दरोदराज इलाकों से मिलाती है। इस शाहराह पर वाक़ बड़े शहरों में लजबैला, वाद, खजदार, कल्लात और क्वेटा हैं। ये एक पुख्ता सड़क है, इसकी लंबाई तकरीबन 816 किलोमीटर है। नंबर तीन, कराची क्वेटा शाहराह बरास्ता जैकबाबाद। ये एक पुख्ता सड़क है जो कराची को क्वेटा से मिलाती है। ये शाहराह कराची कोटरी दादू लाड़काना जैकबाबाद सिब्बी और क्वेटा से गुजरती है। इसकी लंबाई 762 किलोमीटर है। नंबर चार, क्वेटा पेशावर शाहराह। ये शाहराह पेशावर को क्वेटा से मिलाती है। ये शाहराह क्वेटा मुस्लिम बाग किला सैफुल्ला जू बन्नू कोहाट और पेशावर से गुजरती है। इसकी लंबाई 535 किलोमीटर है। सफ़र नंबर 109। नंबर पाँच, क्वेटा मुल्तान शाहराह बरास्ता लुरालाई। ये पुख्ता सड़क क्वेटा को मुल्तान से मिलाती है। ये शाहराह क्वेटा मुस्लिम बाग किला सैफुल्ला लुरालाई फोर्ट मसनू डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान से गुजरती है। मुल्तान से ये कौमी शाहराह शाहराह पाकिस्तान से मिल जाती है जो कराची से लाहौर तक जाती है। नंबर छः, अटक मुल्तान शाहराह। ये सड़क मुल्तान भक्कर मियांवाली और अटक से गुजरती हुई मुल्तान को अटक से मिलाती है। नंबर सात, इलाकाई तआवुन बराए तरक्की RCD शाहराह। ये शाहराह पाकिस्तान को ईरान और तरक्की से मिलाती है। इसका आगाज़ कराची से होता है और ये लजबैला, वाद, खजदार, किल्लात, नोशकी, नुकंडी और ताफ्तान से होती हुई ईरान और तुर्की तक जाती है। नंबर आठ, इंडस हाईवे। दरियाए सिंध के मगरबी दाएं किनारे के साथ साथ ये शाहराह पेशावर को कराची से मिलाती है। ये पाकिस्तान की दूसरी तबील तरीन शाहराह है। ये शाहराह पेशावर से कराची तक बरास्ता कोहाट बन्नू डेरा इस्माइल खान डेरा गाजी खान कश्मूर शकारपुर लाड़काना दादू सहवन और जामशोरों से गुजरती है। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे। ये शाहराह काफ़ी चौड़ी और पायदार है। इसकी लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर है। इस शाहराह की तामीर से कराची और हैदराबाद के दरमियान सफ़र के फासले में कमी वाक़ होती है क्योंकि कौमी शाहराह के रास्ते कराची और हैदराबाद के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था। अब इस हाईवे को मोटरवे में तब्दील किया गया है। नंबर 10, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। लाहौर से इस्लामाबाद तक ये शाहराह अरबों रुपए की लागत से तामीन की गई है। इसको आम तौर से मोटरवे कहा जाता है। इसकी लंबाई 367 किलोमीटर है। ये शाहराह बैनुल अक्वामी मयार की है। इसकी दोनों इतराफ में तीन तीन कतारें रास्ते हैं। लाहौर से शुरू होकर इस शाहराह पर पिंडी भटियाँ कोट मोमिन सालम भेरू कलरकहार बालसर चकरी और इस्लामाबाद वाक़ हैं। पिंडी भटियाँ पर ये एक और सड़क के ज़रिए फैलाबाद को मिलाती है। मोटरवे अब पेशावर तक वसी किया गया है और इस्लामाबाद से पेशावर तक इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। सफ़र नंबर 110। हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुकद्दरा कौमी शाहराह के नाम से एक इदारा कायम किया है। इसका अहम मकसद ये है कि वो आमदोरफ्त और नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर करे। इस इदारे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों और शहराओं की तामीर के चंद नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है ताकि उन हिस्सों में राबता पैदा करके उनके माबैन फासले कम किए जाएं। नंबर दो, रेलवे। पाकिस्तान में आमदोरफ्त के दूसरे ज़राए में रेलवे शामिल है। क्याम पाकिस्तान के बाद रेलवे ने सफ़र और नकलों हमल की सहूलतें मुहैया करके नहायत अहम किरदार अदा किया है। सड़कों के मुकाबले में रेल का सफ़र निस्बतन ज़्यादा महफूज और तेज़ रफ्तार है। पाकिस्तान रेलवे का पेचीदा जाल 7791 किलोमीटर लंबाई की पटरियों पर बिछा हुआ है। इसके 815 स्टेशन, 815 स्टेशन और 46 ट्रेन हॉल्ट हैं। इसके बड़े असासों में 580 इंजन, 2275 मुसाफरों के डब्बे और 21732 माल ब्रादर डब्बे हैं। क्योंकि ये तमाम असासे पुराने हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत उनकी तजदीद करने और उन्हें तब्दील करने पर तवज्जो दे रही है। किताब का पार्ट नंबर 10 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 11 में सुनिए।